सेवाएं महाराज जी ने की है, और सेवाएं करते करते वृंदावन के उथल पुथल के माहौल में महाराज ने प्रभुपाद की पुस्तकों को बहुत गहनता से अध्ययन किया। साथ में जो ब्रजवासी भक्त हैं उनका भी संग लेकर ब्रज की जो महिमा है, कथा है, उसका श्रवण किया। और वृंदावन के प्रति एक बहुत ही विशेष प्रेम महाराज के हृदय में है, वो हम देख सकते हैं। जब महाराज जब कभी हम वृंदावन यात्रा में जाते हैं और महाराज का संग प्राप्त होने का अवसर मिलता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जहां पर गौरांग महाप्रभु गए हैं वहीं पर हमको जाना चाहिए। उन स्थानों पर से सब स्थान हेरी गोवामी प्रणय भगत से, और वहां स्थानों पर जाकर ऐसे भक्तों से श्रवण करना चाहिए जिनके हृदय में उस धाम के प्रति बहुत ही गहन प्रेम है। और उनसे श्रवण करने से हमें भी जो धाम है और धाम के जो भगवान है उनके प्रति रुचि और आसक्ति और प्रेम प्राप्त हो सके। तो ये महाराज की बहुत ही गहरी विशेषता है कि धाम के प्रति बहुत प्रेम है, और सभी धामों के प्रति विशेष रूप से। बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम तक कहीं भी यात्रा जाती है तो महाराज जी को बुलाते हैं वहां पर, द्वारका से लेकर जगन्नाथपुरी या मायापुर बीच में जो भी धाम आते हैं वहां पर। तो धाम की महिमा का बहुत अच्छे रूप से महाराज विस्तार से उसका वर्णन करते हैं। साथ में जो वैष्णव आचार्य हैं उनकी महिमा का भी बहुत गहराई से वर्णन करते हैं। पिछली बार मुझे याद है उत्तम नगर में जगन्नाथानंद पंडित की महिमा का महाराज जी ने वर्णन किया था चैतन्य चरितामृत में। तो हालांकि चैतन्य चरितामृत हमने शायद पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जितना विस्तार से महाराज जी ने वर्णन किया, विशेष रूप से किस प्रकार से जगन्नाथानंद पंडित वो चंदन का तेल बंगाल से विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के लिए लेकर के आए, तो इतना हृदय स्पर्शी था कि उतना चैतन्य चरितामृत पढ़ने से नहीं समझ पाता। तो चैतन्य चरितामृत के जो चरित्र है उनके प्रति, भागवतों के चरित्र उनके प्रति, वैष्णव आचार्य उनके प्रति महाराज का बहुत विशेष प्रेम है, और उनका वर्णन जब करते हैं तो लगता है कि समय का अंत ही नहीं। और कृष्णलीला का वर्णन इससे पहले एक बार महाराज जी आए थे तो नीचे भक्तिवंत हॉल में किया था, इतना सुंदरता से महाराज जी ने कैसे भगवान कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं उसका इतना विस्तृत वर्णन किया था, ऐसा लगा मानो वहीं पर पहुंच गए भगवान के साथ। तो ये हमारा सौभाग्य है, ज्यादा संघ हमको प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी जो भी साधु संघ सर्वशास्त्र को लवमात्र साधु संघ सर्वसिद्धि हो, तो महाराज जी थोड़ा पाक्षद ऐसा निकाल करके यहाँ पर आए हैं, तो आप सभी उनके प्रोग्राम का विशेष लाभ लेंगे यहाँ भी, और जो बाकी के भी जो प्रोग्राम है वहाँ पर भी उपस्थित जा सकते हैं। तो आइए हम परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के यहाँ स्वागत करते हैं श्री राधा वृंदावन सद मंदिर में। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की
हरे कृष्ण। प्रभु जी ने जो बताया उसको पूरा पूरा विश्वास मत कीजिए, वो हैं इस प्रकार, इसीलिए सबको इससे देखते हैं, जो बड़े हैं सबको बड़े देखते हैं। एनीवे आपको खुद पता ही चल जाएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जसोदा नंदन व्रज जन रंजन, सोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय श्लोक संख्या 35। तत्रापि मुख्य एवार्थ आत्यन्तिकतस्तयस्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यम् कृतान्तभयसंयुतः तत्रापि मुख्य एवार्थ आत्यन्तिकतयस्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यम् कृतान्तभयसंयुतः तत्रापि मुख्य एवार्थ आत्यन्तिकतयस्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यम् कृतान्तभयसंयुतः। शब्दार्थ तत्र
तत्र
वहां अपि
अपि
भी मोक्षः
मोक्षः
मोक्ष
एव
एव
निश्चय
ही
अर्थे
अर्थे हेतु आत्यंतिकतया
आत्यंतिकतया
सर्वाधिक महत्वपूर्ण इष्यते
ग्रहण करें
त्रैवर्ग्य अन्य तीन अर्थात धर्म अर्थ तथा काम अर्थ पुरुषार्थ यतः जिससे नित्यम नियमित रूप से कृत अंत
मृत्यु
भय संयुत डरा हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अन्य तीन तो प्रकृति के कठोर नियम अर्थात काल द्वारा नाशवान है। तात्पर्य मोक्ष को अन्य तीन पुरुषार्थ की अपेक्षा अधिक गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि सुत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में उपदेश दिया है कि धर्म आर्थिक विकास की सफलता पर अवलंबित नहीं, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक आसक्त रहते हैं अतः हम मंदिर या गिरिजाघर में ईश्वर के पास किसी ना किसी आर्थिक कारण से जाते हैं, किंतु आर्थिक विकास का अर्थ इंद्रिय तृप्ति नहीं है। हमें चाहिए कि इन सब में ऐसा समंजन करें कि हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। इसलिए इस श्लोक में मोक्ष पर बल दिया गया है। अन्य तीन पुरुषार्थ भौतिक होने के कारण नश्वर है। इस जीवन में बैंक में किसी भी द्वारा प्रचुर धन संचित कर लेने तथा अनेक वस्तुओं का स्वामी बन जाने पर भी सारे वस्तुएं मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगी। भगवद गीता में कहा गया है कि मृत्यु तो भगवान है, जो भौतिकवादी मनुष्य द्वारा अर्जित सारे वस्तुएं अपने साथ लेते जाते हैं। मूर्खतावश हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। मूर्खतावश न तो हम मृत्यु से डरते हैं, न ही इसका विचार करते हैं कि मृत्यु अपने साथ धर्म अर्थ तथा काम के द्वारा अर्जित प्रत्येक वस्तु को लेते जाएगी। धर्म के द्वारा हमें स्वर्ग की भी प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जन्म मृत्यु जरा और रोग के चंगुल से भी हमें छुटकारा मिल गया। तात्पर्य यह है कि हम त्रैवर्ग्य धर्म अर्थ तथा काम के अपने अपने स्वार्थ की बलि तो कर सकते हैं, किंतु मुख्य के नहीं। मुख्य के संबंध में भगवद गीता में कहा गया है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति। मुख्य का अर्थ होता है कि इस शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना होता। निर्विशेषवादियों के लिए मुख्य का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म से तदात्म्य, किंतु वास्तव में यह मुख्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य को उस निर्गुण पद से पुनः इस भौतिक संसार में नीचे आना होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण खोजे और उनकी भक्ति में लग जाए, यही असली मुख्य है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि हमें पुण्य कर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति पर बल नहीं देना चाहिए, हमें तो भगवान विष्णु के दिव्य धाम पहुंचने की चिंता करनी चाहिए, जिनमें से गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर है और वहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। अतः मुख्य के इच्छुक लोगों के लिए यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबसे बड़ा उपहार है। ओम अज्ञानंतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के ये चतुर्थ स्कंद के ये जो प्रसंग आप आलोचना कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इस संसार के सबसे सीनियर मोस्ट रिनाउंस्ड पर्सन चतुर्कुमार सनकादि परमहंस, जो आपने आप को 5 साल की अवस्था में रखते हैं, कपड़ा तक नहीं पहनते हैं, कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने पृथ्वी महाराज का राज सदन में पधारे। पृथ्वी महाराज ने उनको अपने परिकरों के साथ अभिवादन किए, उनको स्वागत किए और उनको जिस प्रकार अभ्यर्थना करना चाहिए किए, उसके बाद हाथ जोड़ करके बड़े विनय के साथ उनको प्रश्न किए। और पृथ्वी महाराज का ये प्रश्न आप पढ़ चुके होंगे, इस प्रश्न से ही पता चलता है पृथ्वी महाराज के कैरेक्टर कैसा होगा। कितने महान, कितने महान। जिन प्रश्न को सुन करके सनकादि परमहंस वो कृतकृत्य हो गए और उनके प्रश्न को अभिवादन करते हुए, उनको प्रशंसा करते हुए, यद्यपि बोले ये प्रश्न का उत्तर आपको पता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हूँ, लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनका एक आदत होता है, क्या खुद जानते हैं लेकिन फिर कन्फर्मेशन, क्योंकि मेरे बात शायद पब्लिक ना सुने, इतने बड़े महापुरुष बोलने से तो मानेंगे, इसलिए सनकादि परमहंस के द्वारा इस बात को कहलाने के लिए वो उनको पूछ रहे हैं, दृढ़ता करने के लिए अपनी जानकारी को, इसके लिए उनको पूछ रहे हैं, ये बात भी कहे सनकादि ऋषि ने। फिर उनके प्रश्न का उत्तर देने लगे, एक ही दो प्रश्न था जिसमें पूरे अध्याय चला गया उत्तर देते देते, तो उत्तर देने लगे, उनको समझाने लगे, क्यों क्या प्रश्न किए थे, एक ही प्रश्न किए थे कि हे महापुरुषगण महानुभव, हम जैसे पतित जीव है, हम लोग के लिए परम कल्याण के उपाय क्या है बताओ, बस और यही पूछना चाहिए, वास्तविक यही पूछना चाहिए। हम जैसे हुड़बकों के प्रतिनिधित्व करते हुए पृथ्वी महाराज ने जैसे सबसे सीनियर मोस्ट ज्ञानी पुरुष मिल गए, तो उनको यही पूछना चाहिए, अगर हमको इसे कोई मिल जाना चांस तो हम क्या पूछेंगे, बताने आप लोग मंदिर में थोड़ा बहुत कुछ और पूछ सकते हैं, नहीं तो संसारी लोग कहाँ सामने आ जाए तो सीधा पूछेंगे, हाँ जी प्रभु जी कि महाराज जी बेटी का ब्याह हो नहीं रहा है, उसका नौकरी लग जाए, उसका धंधा पानी ठीक नहीं, बस यही प्रश्न करेंगे, रोएंगे, और इसी के लिए बोले कोई मंत्र वंत्र बता दो, कुछ कर दो, अरे घर काम नहीं तो इसी के फंस करके मर रहा, फिर इसी को और बढ़ाओ, हैं एक तो बुखार हुआ 102 103 बोलते नहीं 106 कर दो उसको इसमें से काम नहीं बनता तो ऐसे नहीं, पृथ्वी महाराज ने महान पुरुष होने के नाते, वास्तविक तत्व ज्ञानी होने के नाते, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को किस प्रकार उपयोग किया, सनकादि परमहंस को जो प्रश्न किया वही उचित प्रश्न है। प्रत्येक भौतिकवादी दुखी लोगों को यही प्रश्न करना चाहिए, प्रत्येक दुखी को, लेकिन हम प्रश्न करना ही नहीं आता है। तो वो प्रश्न किए उन्होंने, तो उनके उत्तर में सनकादि चतुर कुमारों ने जो उत्तर सनक पहले उत्तर दिए सनत कुमार ने, वो उत्तर देते देते आज के श्लोक में कहते हैं, कई अच्छे अच्छे चीज बताए, बहुत सारे उपाय बताए, बता करके अंत में आज के ये श्लोक में कहते हैं कि देखिए आप घर गृहस्थी में है, राजा है, आपके संसार है, पूरी प्रजा है, सब कुछ है, लेकिन आप धर्म के अनुसार राज्य पालन करते हैं, अर्थ उपार्जन करते हैं सारे, और करते हैं उस काम भोग भी करते हैं, धर्म अर्थ काम इस प्रकार धर्म के अनुसार करते हैं, लेकिन देखिए ये जो चतुर्वर्ग है, चार पुरुषार्थ जो मानते हैं संसार में, एक तो धर्म करो, धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ, अर्थ कमा कर भोगो, काम भोगो, और लास्ट में अब जो काम भोगने के लिए शरीर साथ में नहीं देता तब फिर निकल जाने के लिए व्यवस्था करो, मोक्ष के लिए व्यवस्था करो। बोले ये चार प्रकार के जब सारे आपको बताते हैं ऐसे ऐसे करके जीवन पूरा करना है, तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि इन चारों में से जो चतुर्थ है, जो मुख्य है, वही केवल इम्पोर्टेंट है, वही केवल महत्व रखता है, बाकी तीनों तो थर्ड क्लास है। बोले क्यों, अरे ये तो इसे खत्म हो जाएगा, वो तो काल के साथ नष्ट हो जाता है, वो नश्वर है, वो रहने वाले नहीं है, तो इसके लिए कहा कि चिंता करता है, मृत्यु आएगा ना आएगा, अवश्य आएगा, वो ये जाएगा मृत्यु के साथ, वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। तो इसलिए केवल मुक्ति कामी होना चाहिए, मुख्य ही को सबसे गुरुत्व देना चाहिए, इसी को लक्ष्य करके सब काम करना चाहिए, बाकी जो तीन है यही तो आपने अपने अदृष्ट जो भाग्य है, जो दैव है, उसके से फिक्स है, उसके लिए प्रयास क्यों करें, तत्प्रयास न कर्तव्यम यथा आयु व्यापर, उसके लिए बेकार टाइम एनर्जी खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो पहले से आपके लिए रेडी है, आपके लिए रखा हुआ है स्टॉक में, फिर आपके लिए क्यों हाथ पर पीटता है। तो इन तीनों के लिए प्रयास न करके केवल मुख्य के लिए प्रयास करना चाहिए, यही हमारा असली लक्ष्य है, ये बताया। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, प्रभुपाद जी के हमारे वैष्णव परंपरा में यही शिक्षा है, आप लोग को भी सुने होंगे, पढ़े होंगे, जाने होंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मुख्य तो है बहुत काम की चीज, और प्रभुपाद जी ने गीता से उदाहरण लिए कि मुख्य को ऐसे है कि मरने के बाद दोबारा जन्म ना होना, छुट्टी पा जाना, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न इति, फिर इधर नहीं आना, इस छुटकारा पा जाना। बोले छुटकारा पा जाना, छुटकारा पाकर कहाँ जाएंगे भाई, यहाँ नहीं आएंगे, कहेंगे जा स्वर्ग जाएंगे कि और कोई लोग जाएंगे, और फिर ड्यूरेशन खत्म होगा, पैसा खत्म होगा, फिर आएंगे भाई। जब तक अब फर्स्ट क्लास एसी का टिकट खरीदा और जब तक जाएंगे उसके बाद उतरना पड़ेगा, धक्का मारे निकाल लेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ही योगी है, आप धर्म अर्थ कमा करके स्वर्ग और कोई कोई प्राप्त किया तो वैसे फिर आना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो मुक्ति जो मुख्य लोग चाहते हैं, भागवत तदात्म्य ब्रह्म में लीन हो जा, ब्रह्म लीन, बोले वहां भी जाकर को उनको संतुष्टि नहीं होता, वो फिर आते हैं वापस। बोले फिर मुक्ति को सनकादि परमहंस कैसे रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं मुक्ति कामी होना चाहिए, मुक्ति को गुरुत्व देना चाहिए, तो क्या यही मुक्ति, अरे वो भी तो टेम्पोरारी है, वो तो इसी देह में खत्म हो जाएगा बाकी तीन, और बाकी चौथा थोड़ा और ऊपर जाके वो भी खत्म, वो भी तो भौतिक है, उसमें कौन सा चैतन्यता है कि भगवत्ता। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये निर्विशेषवादियों के मुक्ति नहीं कहते, यद्यपि सनकादि परमहंस पहले निर्विशेषवादी कोटि में थे, वो इसी में मानते थे, लेकिन जब भगवत दर्शन हो गया उनका तो उनका बुद्धि चेंज हो गया, तो उन्होंने फॉर्मूला चेंज कर दिया, तो असली मुक्ति का परिभाषा उनको पता चल गया। जब भगवत पद रजत से अर्पित सी तुलसी चंदन के गंध केवल सेंट उनका नाक में गया, और नाक से जा करके हृदय में खलबली मचाया, और हृदय में जो निर्विशेष ब्रह्मलीन आपने आसन जमा कर बैठा था, बोले गेट आउट, निकाल दिया उसको, निकाल करके वो हृदय सिंहासन पर स्वयं भगवान की जो गंध, भगवत चरण के प्रति आसक्ति, वो बैठ गया जमा करके। लो वो बिचारे चारों को खड़े खड़े, आजकल तो बाईपास करते हैं फिर भी कुछ डालते हैं ना, रिमोट ऑपरेशन होता है, बाईपास रिमोट होता है, कुछ तो डालते हैं अंदर ना, लेकिन ये ऑपरेशन भगवान ने किए विदाउट टच, 7-8 फीट दूरी से ऐसे केवल सेंट मार के ऑपरेशन कर दिया, हार्ट ट्रांसप्लांट जस्ट बाय सेंट। यस, अपने चरण की तुलसी चंदन का गंध से हृदय परिवर्तन हो गया, हार्ट ट्रांसफर हो गया, क्या ऑपरेशन है, ओपन हार्ट सर्जरी भी ऐसा नहीं हो सकता सक्सेस, कोई स्पॉट नहीं, कुछ एनेस्थेसिया नहीं, नथिंग। वो बिचारे को बिल्कुल बदल गया हार्ट, हृदय बदल गया, हृदय तो मन ही होता भाई, अंतकरण ही बदल गया, सब बदल गया, तब तो उनका परिभाषा ही बदल गया, सब बदल गए। अब वो आकर के जो कहते हैं जो मुक्ति ही परम अर्थ है, जो परम लक्ष्य होना चाहिए जीव का, वो मुक्ति क्या है। हमारे जो भगवत भक्तगण है, वैष्णव लोक हैं, वो मुक्ति को दूसरे अर्थ करते हैं, यद्यपि बाकी संसार के भाषा में जो चतुर्वर्ग में जो मुक्ति आता है, वो मुक्ति को मुख्य लोग मानते हैं कि बस ये संसार दुख से छुट्टी, अब भास ऊपर जाए, जा करके भगवान में मिल जाए, भगवान हो जाए। अरे भगवान तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, भगवान भगवान है, तुम हो ही नहीं सकता भगवान, लेकिन वो मन में बैठा रखें, मन में भगवान नहीं हो तो कुछ मिलते जाएंगे, कुछ ना कुछ जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाओ, जीरो होने से तेरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर आएंगे, और क्या करें, हमारा प्रोजेक्ट है टू बिकम हैप्पी, अब जीरो होने से थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो बोलते हैं कि इस मुक्ति के लिए नहीं, तो जो मुक्ति के परिभाषा देते, मुक्ति ही अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, असली मुक्ति है क्या है, मुक्ति का असली अर्थ है अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, स्वरूप स्थिति को ही मुक्ति कहते हैं, आपने स्वरूप को प्राप्त कर जाना ही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति का साधारण अर्थ हम समझते हैं आम तौर पर, मुक्त हो जाना, छूट जाना, यही तो है ना, जैसे हम बैठे हैं, हाथ बंधा हुआ, पैर बंधा हुआ है, कमर में सब रस्सी बांध कर डाल दिए, आप दयालु हैं, पिछारे बंधे हुए हैं यार, हिल डुल नहीं सकते, कंप्लीट कस करके बंधे हुए, बंधन ही कहेंगे ना। और आपने से कोई कृपा करके आ करके खोल दिए, खोल दिए तो क्या कहेंगे, अब तो मुक्त हो गए, अब तो मुक्त हो गए, अब फ्री कर दिया उनको। लेकिन आप तो खोल तो दिए, लेकिन मैं इतने बंधे होकर टाइट अभ्यास में पड़ गया हूं, आप खोल कर चल के फिर बैठा हूं, ऐसे हिलना डोलना ऐसे बैठा यथास्थिति, तो उसको कहा जाए कि मुक्त हो गया करके, बोलते ना अरे मुक्त होने से पहले बंधन में था जो था, मुक्त होने के बाद तो वही है, तो कैसे मानो मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद में कुछ तो अलग परिवर्तन होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, उठकर चलना चाहिए, घूमना चाहिए, बाथरूम जाना चाहिए, खाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। वो ऐसे ही बैठा है ठुंटा, जब पहले बैठा था बंधे हुए अभी भी ऐसे बैठा, तो हाउ कैन आई बिलीव दैट इज मुक्त, मुक्त करके माना नहीं जा सकता ना। बात तो सही है, बंधे में जो अवस्था था आज ही चीज खोल देने पर भी हुई तो मुक्त कैसे माना जाएगा। मुक्त होने के बाद जो क्रिया मुद्रा होना चाहिए, हिल डोल चल फिर वो होना, तब तो जाए माने क्या नहीं अब तो खुल गया अब तो मुक्त है, वो से नहीं हो रहा है। तो हिल डोल क्या है, ये जो कार्य करना वो क्या है, वो एक ही कार्य है, ये शरीर ये मन ये वाणी बुद्धि संपत्ति सामर्थ्य द्वारा केवल भगवत सेवा करने से ही जो हमारा असली कार्य है तब माना जाएगा अब तो काम कर रहा है, अब थोड़ी बंदा है, अब हाथ पर चल रहा है उसका, इसी को माना जाएगा। जब भगवत सेवा जो हमारा स्वरूप हमारे जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के दास हमारा असलियत पहचान है, तो इस पहचान के अनुरूप कार्य अगर करें तो माना जाए कि वो बंधे नहीं है अब तो खुले हैं, वो काम दाम कर रहा है, इज फ्रीली वर्किंग, इज वर्किंग, तो माना जाए। हाँ वो काम नहीं कर रहा, बैठा है ओम सो अहम, अरे ठुंटे वो तो बंधे वर कुछ नहीं करते, तेरे सामने भगवत विग्रह है, तेरे जाए कि दंडवत करो, नहीं कोई नहीं सो अहम मैं ही हूं। अच्छा तू ये माला पहनेगा नहीं, दंडवत करेगा नहीं, स्तुति करेगा नहीं, भोग अर्पण करेगा नहीं, कुछ नहीं, तो है क्या, तो बंधा है, पूरा बंधन में। जो वो क्रिया नहीं करते हैं तो उसको माना जाएगा ये महामूर्ख बंधे हुए, जो ऐसा ना करके भगवत कर्म लिप्त हो जाता हूं, अब कर रहे हो तो मुक्त है, वही तो मुक्ति होने के बाद यही कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारा ओरिजिनल पोजिशन वही है, भगवान के नो करो उनके सेवा करना, तो इसी को कहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में ज्ञानी ध्यानी मानी वो मानते हैं दास छे हम वही फिर वो रहेंगे, इतना प्रयास करता कि फिर नौकर बनेंगे, छी 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 हम तो भगवान बनेंगे, अरे बनो भगवान। अरे नारियल की रस्सी में बंधे थे, अब स्टील चेन में, लोहे चेन में, सोने के चेन में बंध जाएंगे, लो कैसे बनेंगे। बहुत लोग उन्हीं को मानते हैं, प्राय मायावादी ज्ञानवादी निर्विशेषवादी जो मुक्ति को परम मुमुक्ष मुक्ति को परम सिद्धि मानते हैं, वो मुक्ति ये बंधन ही है, उसी को मानते हैं। तो इस मुक्ति के लिए हमारे वैष्णव शास्त्र में तो बहुत खतरनाक डेंजर साइन दिया गया। श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, तारा मध्य मुक्ति वांछा कैतव प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। बोले ये जो बाकी, बोले भक्ति तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, बोले भुक्ति मुक्ति सिद्धि पिसाची जावत हृदय वर्तते। अगर हृदय में पिसाची समझते ना, चुड़ैल, चुड़ैल समझते ना, चुड़ैल या दाई ने अगर बैठा आपको, भूत ग्रस हो गया आपको, चुड़ैल आपको सवार हो गया, अगर हंटेड बाई घोस्ट, अब कोई अच्छा खासा आदमी आपके पास आएगा, बाप रे बाप भूत चढ़ा हुआ है उसको, तो भूत चढ़ा हुआ आदमी तो भूत के जैसा बातचीत करेगा, खाएगा पर सब भूत के जैसा करेगा, नॉर्मल आदमी नहीं रहेगा। अब जैसे तीन भूत एक साथ में चुड़ैल आ जाए, एक भुक्ति मुक्ति सीधि भक्ति रूपी महारानी हो, तो भूलेगा नो नेवर, यहां नहीं जाएंगे, तीन तीन चुड़ैल बैठे उसके ऊपर, एक में हाल खराब करते तीनों सवार है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, हृदय पिसाची जावत हृदय वर्तते, जब तक पिसाची चुड़ैल जब तक बैठेंगे, तीन भूत सवार हुए हैं, मुक्ति की इच्छा, भुक्ति की इच्छा, सिद्धि की इच्छा, तो भक्ति तो आ ही नहीं सकता, नेवर एवर आ ही नहीं सकता। बोलते हैं तीनों खतरनाक, तो तीनों तो खतरनाक है, लेकिन तारामती इन तीन में भी, यहां भी कहा गया चार में भी, धर्म अर्थ काम वहां कहते हैं कबीर, इन तीन में भी जो तीन हमारे महा इच्छा होता है, भोगने का इच्छा, मुक्ति पाने का इच्छा और सिद्धि प्राप्त, कोई परफेक्शन ये इच्छा, यही भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये तीन के बीच तारा मध्य मुक्ति वांछा, ये जो मुक्ति पाने का इच्छा, बोले ये चीटिंग नंबर वन, कैतव प्रधान, ये सबसे खतरनाक है मुक्ति का इच्छा। और क्यों ना, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान, कृष्ण भक्ति तो छुमंतर हो जाएगा, कभी नहीं आएगा। अरे बाप रे बाप, खतरनाक, हो ही नहीं सकता कृष्ण भक्ति अगर मुक्ति के आशा रखे तो। ऐसी सनकादि ऋषि कैसे कहते हैं मुक्ति ही महान है, वही लक्ष्य रखना चाहिए, नहीं, निश्चित रूप से वो मुक्ति को लक्ष्य नहीं करते हैं। एक प्रसंग आता है श्री चैतन्य चरितामृत में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में पूरी पधारे, पुरी में आकर के सार्वभौम उद्धार किए, सार्वभौम उद्धार लीला बड़े विशाल है, बड़े व्यापक वर्णन किया गया है उसका। तो जब सार्वभौम का उद्धार हो ही गया, सार्वभौम को उद्धार करने के लिए महाप्रभु एक हफ्ता लिए, 1 week टाइम लिए, ये सनकादि लोगों को उनको तो खड़े खड़े वहीं कर दिए ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट चारों को चारों हार्ट ट्रांसफर हो गया। लेकिन सार्वभौम का हार्ट ये सनकादि ऋषियों से और पावरफुल था, हाँ, इतने ग्रसित था हृदय, सनकादि विचार तो दिव्य है ना, ब्रह्मपुत्र है, इसलिए उनका बीमारी कम था, वो डुप्लीकेट तो था नहीं, वहाँ सब ब्रह्मलोक में ओरिजिनल चीज मिलता था, नेचुरल सब कुछ, तो इसलिए बीमारी इतना था नहीं। और सार्वभौम तो यहीं के, तो यहाँ का माल खा करके, हाँ बिल्कुल, हृदय के ऊपर स्टील कोटिंग चढ़ा हुआ था। सार्वभौम बताते हैं, मेरे हृदय लौहपिंड, तर्क जड़ लौहपिंड बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील, स्टेन नहीं पकड़ेगा भैया, कहीं समुद्र किनारे थे, खारी पानी की वजह से लोहा भी पिघल जाता है, आप देखे ना समुद्र किनारे, आप तो नहीं, समुद्र के पानी हवा कोई लोहे के किस प्रकार करो, थोड़ी साल में वो गल जाएगा, लेकिन वो पूरी में रहते थे सरों, लेकिन ये लोहा स्टेन नहीं पकड़ रहा था, स्टेनलेस था, बिल्कुल स्टील का फ्रेम था उनका हृदय। भागवत कहता है तद अस्म सारम हृदयं बतेदम, हमारा हृदय अस्म सार मतलब पत्थर का है, अरे पत्थर तो मशीन लगाओ तो उड़ताड़ के टुकड़ा हो जाएगा, उसको तो टेक कर, लेकिन स्टेनलेस स्टील का हो तो हम क्या करें। तो उनका बोलते हैं तर्क जड़ लौह पिंड जेना, मेरा हृदय स्टेनलेस स्टील का, वो ब्लास्ट फर्नेस फेल हो जाएगा उसको मेल्ट करने में, ऐसा ही पावरफुल था। लेकिन उसको महाप्रभु ने एक हफ्ता लगा उसको मेल्ट कर दिया। और सारों खुद बोलते हैं मेरे लोह पिंड जैसा हृदय को पिघल करके पानी पानी कर दिया, कितने प्रचंड प्रताप होगा, व्हाट ए पावरफुल हिट, कितने प्रचंड प्रताप आप होगा, तू पास में नहीं रहा, तू स्टूडेंट बनकर बैठा, मैं टीचर बनकर बैठा, स्टूडेंट ही टीचर के हाल खराब कर दिया, हृदय को मेल्ट कर दिया, वो स्वयं मानते हैं सात दिन। और जब मेल्ट हो गए, जो हृदय परिवर्तन हो गया सार्वभौम का, तो महाप्रभु टेस्टेड होकर भी किए, बोले हाँ ओके पक्के हो गया अभी, तब छोड़ दिए, छोड़ दिए तो सार्वभौम आए, जो उनका लाइब्रेरी में किताब था सारे निकाल दिए, बोले नहीं आप सारे चेंज कर दिए, पूरा लाइब्रेरी में बुक्स सब बदला दिए, सारे तिलक बदला दिए, मतलब हेडलाइट स्पॉटलाइट एवरीथिंग चेंज, यस चेन चांज करके आए, जो सोने के चेन मोटे मोटे डालते थे वो तुलसी के कंठी लग गया है ना, नहीं अब हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल हो गया तब अब ये सब करके आए, और बाकी सब जो तर्क संग्रह आदि आदि से पढ़ते हैं, विवेक चुड़ामणी ये सब छोड़ छाड़ करके अब भागवत पढ़ने लगे, भागवत पढ़ने लगे। भागवत पढ़ करके महाज्ञानी थे, इतने बड़े धुरंधर विद्वान पंडित थे, जगन्नाथ जी के हृदपृष्ठ थे भाव संत। तो उन्होंने भागवत पढ़ करके एक दिन महाप्रभु के पास आए, डेली आते थे, जगन्नाथ दर्शन से पहले आते थे महाप्रभु के। एक दिन आए और आकर के क्या कहे उसको सुनते हैं। आपका कितना टाइम है वो? 10 मिनट 20 मिनट नहीं, 8:40 तक मुझे। चलेगा पढ़े। एक दिन सार्वभौम प्रभु आगे आइला, नमस्कार करी श्लोक पढ़िते लागिला। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए और नमस्कार करने के बाद एक श्लोक सुनाने लगे। भागवतेर ब्रह्मस्तवेर श्लोक पढ़िला, श्लोक से दुई अक्षर पाठ फिराइला। श्रीमद भागवत में से ब्रह्मा जी के स्तुति को सुनाने लगे, किंतु उन्होंने श्लोक के अंतिम दो अक्षर को बदला दिया। तत्तेनुकंपां सुषुमिख्यमाणो भुंजान एव आत्मकृतं विपाकं हृद्वाक बपुभिर् विदधान नमस्ते जीवेत यो भक्ति पदे सदाय भाक। ओ ब्रह्मा जी बोले मुक्ति सदाय भाक, वो उनको चेंज करे भक्ति सदाय भाग कर दिए। 10:14:8 तो जब उसको इसे बदल के इसे बोले प्रभु कहे मुक्ति पदे यहा पाठ हय, भक्ति पदे कहने पढ़ा कि तुम्हार आशय। महाप्रभु तो पकड़ लिए, हे भगवान है, उनको सारे याद था। हाँ ब्रह्मा जी ने उनके बेटा उनके लिए जो बोला है, बेटा बोलने तो पिताजी जी को याद रहेगा ही, उनने खूब बोले, ब्रह्मा उनके पुत्र है ना, तो उनने जो बोले थे सीरियसली तो पिताजी को याद है, अब तक उनको कौन सा याद करना पड़ता है। तो वो जो सार्वभौम बोले वो चेंज करके बोलते हैं, वो बोले नो तू एडिट कैसे किया है? तो प्रभु कहे मुक्ति पदे यह पाठ है, बोले लेकिन भागवत में श्लोक में तो मुक्ति पदे से दाय भाग है, तुम उसको भक्ति पदे कैसे पढ़ रहा है, क्या मतलब दे रहा है भाई, किस लिए उसको चेंज कर रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत आपत्ति की, इस श्लोक में तो मुक्ति पदे शब्द आया है किंतु आपने उसे बदलकर भक्ति पदे कर दिया है, आपका क्या कहना चाहते हैं। भट्टाचार्य कहे भक्ति समन है मुक्ति फल, भगवत भक्ति विमुखेरा हय दंड केवल। बोले प्रभु जी बात ऐसा है, सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, शुद्ध भगवत प्रेम का उदय जो भक्ति का फल है वह भौतिक बंधन की मुक्ति से कहीं बढ़कर है, जो भक्ति से विमुख है उनके लिए ब्रह्म तेज में समा जाना एक प्रकार दंड है। भट्टाचार्य कहे भक्ति समान है मुक्ति फल है, बोले मुक्ति थर्ड क्लास है, भक्ति की तरह थोड़ी है, पता नहीं व्यासदेव ने मुक्ति कैसे लगा दिए, याद नहीं आया क्या होगा, कि प्रिंटिंग मिस्टेक है समथिंग, तो प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, राइटिंग मिस्टेक है समथिंग। भगवत भक्ति विमुख है दंड केवल, बोले जो भगवान की भक्ति के विमुख है, भक्त नहीं है, उनके लिए तो पनिशमेंट ही है मुक्ति। हाँ उनके लिए पनिशमेंट है, जो सही भगवत भक्त है वो मुक्ति का नाम सुनने से उनको उल्टी लगता है, मुक्ति हट यहां से, उल्टी करते हैं मुक्ति का बात सुनकर। हाँ ये भगवान शंकर कहे, बोले मैं क्या करूं, भगवान ने मुझे मुक्ति के अधिकारी बना दिए और ऐसे पोस्ट मुझे दे दिए कि मैं उनके भक्त के पास जाता हूँ, नो टाट मुक्ति छी छी छी, अब क्या करूं पोस्ट लेकर मैंने। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने बड़े तात्पर्य में लिख दिए हैं। तो आप लोग सो जानते हैं सिद्ध लोकेषु तमसः पारिजत्र वसन्ति हि श्रद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हताः। बोलते हैं कि तो जो असुर है हरि जिसको मारे हैं उनको ही तो भेज देते हैं उनके ऊपर, और ऐसे ऐसे लोगों का हाल वैसे जाते हैं भक्ति की। उस कृष्णेर विग्रह जयी सत्य नाही माने, जय निंदार शुद्ध दिक करे तार सने, से दुईर दंड हय ब्रह्म साविज्य मुक्ति, तार मुक्ति फल नहे जय करे भक्ति। भट्टाचार्य ने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को न मानने वाले निर्विशेषवादी तथा भगवान की निंदा करने और उनसे सदैव युद्ध करने वाले असुर ब्रह्म ज्योति में समाकर दंडित होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमयी सेवा में लग जाता है उसके साथ ऐसा नहीं होता, उसके साथ ऐसा नहीं होता, भक्ति करता। अच्छा बात है कि वो जो कंस आदि हैं और ऋषिपाल आदि है वो भी गोलक वृंदावन गए, ऐसा बात नहीं कि वो भी गए और बाकी भक्त लोग भी जाते हैं, आप लोग जो लाइन लगे आप लोग भी जाएंगे उसी रास्ते को जाएंगे। बोले तो फायदा क्या है भाई, तो कंसों का पार्टी में जाना तो फिर ठीक था, कौन से मंगल आरती नहीं उठना पड़ता और चार नियम पालन नहीं करना पड़ता, जब डेस्टिनेशन ही सेम है ना, नहीं हम भी वही अचीव करेंगे तो वो भाई वही टेक डीसीपी डीसीपी बीटी ऑल दिस थिंग्स, वो तो फ्री फॉरम में जाए। लेकिन यद्यपि दोनों जाते हैं तो वहीं पे भगवत धाम को, लेकिन दोनों में फिर भी अंतर है ना नहीं, हाँ जाने पर भी अंतर है। अब क्या अंतर है आप लोग सोच कर ही बताएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि उनके लिए पनिशमेंट है, जो भक्ति करता है वो ऐसा पनिशमेंट नहीं लेगा। तो इसलिए मैं मुक्ति की जगह पर एडिट करके भक्ति लगाया, भक्ति भक्ति है, मुक्ति समान नहीं है। यद्यपि से मुक्ति है पंच प्रकार, सालोक्य सामिप्य सारूप्य साष्टी सायुज्य आर, पांच प्रकार का मुक्ति होता है सर्व हम जानते हैं, इस बात को बताते हैं। बोले यद्यपि पांच प्रकार के पंचविध मुक्ति होता है और ये सालोक्य सामिप्य सारूप्य साष्टी और सायुज्य, फिर भी सालोक्यादि चारी यदि हय सेवा द्वारा तब कदाचित भक्त करे अंगीकार। बोले ये पांच से सावज्य को छोड़ करके बाकी चार है जो तो फिर भी कभी ना कभी उसको स्वीकार कर ही लेते हैं भक्तों को लोग। यदि शुद्ध भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का अवसर मिले तो वह कभी कभी सालोक्य सारूप्य सामिप्य साष्टी मुक्ति को तो स्वीकार करता है, किंतु सावज्य को तो कभी नहीं, सावज्य मुक्ति को कभी नहीं करता है। सावज्य सुनित भक्तेर हय घृणा भय, सावज्य का नाम सुनते उनका घृणा होता है, भय होता है। नरक वांछय तब सावज्य न लय, अगर उनके पास ऑप्शन रखा जाए एक में सावज्य मुक्ति और एक में नरक, ही विल प्रीफर नरक, बोला बेटर है, बेटर ऑप्शन है। तो नरक वांछे तो वो सावज्य नालय, शुद्ध भक्त तो सावज्य मुक्ति का नाम भी नहीं सुनने चाहते हैं क्योंकि उससे वे भय तथा घृणा उत्पन्न होते हैं। निसंदेह शुद्ध भक्त भगवान की तेज में समा जाने की अपेक्षा नरक जाना पसंद करते हैं। ब्रह्मा ईश्वरे सायुज्य द्वित प्रकार, और सायुज्य भी दो प्रकार के, एक ब्रह्म सायुज्य एक भगवत सायुज्य। ब्रह्म ईश्वरे सायुज्य द्वित प्रकार, ब्रह्म सायुज्य है ते ईश्वर सायुज्य धिक्कार। ब्रह्म सायुज्य तो फिर भी है थोड़ा बहुत, लेकिन भगवत सायुज्य तो और खतरनाक है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की है, ब्रह्म तेज में समा जाना और भगवान के शरीर में समा जाना। भगवान के शरीर में समा जाना तो उनके तेज में समा जाने से भी और अधिक निंदनीय है, जानते ना भाई, और अच्छा तो होना चाहिए। भगवान के एफ्लुजेंस उनके तेज से समा जाना, उससे उनके शरीर में समा जाना तो बेटर है ना, डायरेक्ट उनके बॉडी में चला जाना, बोलते हैं कि और निंदनीय है। बोले क्यों? क्योंकि तेज में समाने के बाद चांस होता है कि अब आ सकते हैं, देयर इज अ चांस पॉसिबिलिटी है अब फिर आ सकते हैं, लेकिन जो बॉडी में चले गए फिर तो खत्म, फिर तो 100% सुसाइड कमिट किया आप, फिर तो सवाल ही नहीं उठता, आ सकते हैं पर गए। अनंत काल तक, चिर काल तक आप वहीं रहेंगे हताश होकर के। हताश, हताश कैसा? ज्ञान, हाँ बिल्कुल ज्ञान रहेगा, जानकर पूरा रहेगा, नित्य नित्य तक रहेगा। सुख इस भौतिक सुख से करोड़ों गुना ज्यादा सुख मिलेगा, सुख के साम्राज्य में रहेगा, लेकिन सुखी नहीं हो सकता। ये कैसे सुख मिलेगा, सुख नहीं होगा ना, ऐसे ही होता है। सुख मिलने पर भी सुखी नहीं हो सकता। आप बोलेंगे उत्पटांग बात है, ये कैसे हो सकता भाई? हाँ ऐसे ही होता है। अभी अगर पुणे सिटी पूरा खाली कर दें, जितने बिल्डिंग है, जितने सामान है, जितने बैंक बैलेंस है, जितने सारे ऐश्वर्य है, और जो जो भोग्य पदार्थ जिसको पसंद करे, नहीं नहीं किसी व्यक्ति नहीं, केवल वस्तु, केवल वस्तु माल मत्ता सब छोड़ दे और आपको अकेले छोड़ दे, लो आप उन्हें की राज, यू एलोन, यू आर दी अंजय, सुखी होंगे? सुख के संपूर्ण प्राचुर्य छोड़ दे, पूरे सिटी का होल, जितने बिल्डिंग है सब आपका है, जहां जहां नेत्र जाए सब आपका ही है। जितने बिल्डिंग देखो, जितने बैंक देखो, जितने गाड़ी मोटर ट्रक हैंड टेन सब फ्लैट बिल्डिंग सब आपका ही है। लेकिन आपके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो सुखी होंगे आपने? अरे भैया हम कभी कभी बर्थडे में कोई कोई अच्छा खासे दिन में सेविंग हो करके पेंटिंग ड्रेसिंग नए कपड़ा पहनकर आते हैं, वो किस लिए? कोई देखे तो सही हमको, हाँ पास बड़े खूबसूरत लगते हैं, कोई फोटो खींचे कुछ करे, तभी तो कुछ मायना रखता है सब का। अब कोई नहीं है देखने के लिए, कोई भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, तो उससे बेटर बाथरूम जैसा है नंगे रहने तो ठीक था, गामछा पहने के और क्या बराबर थे, नोबडी इज देयर। हाँ शर्म धर्म कुछ कर्म कुछ नहीं कोई के लिए तक, तो इसलिए संपूर्ण सुख की स्थिति में रह कर भी सुख नहीं होना, ये स्थिति है। ये स्थिति है भगवान के शरीर में चला जाना, भगवान तो हो ही नहीं सकते, वो तो गया सपना, अब बाकी उनके शरीर में रह करके भगवान नहीं हो सकते, भगवान के दास भी नहीं हो सकते, लो गया चांस। अब ब्रह्म सायुज्य में रहने से तो ऑप्शन रहता है, बहुत बुरा हो जाएगा, नहीं कहीं ना कहीं वापस आएंगे फिर भक्ति विधि करने के, फिर बदलने के, वहां तो फिर गया चांस ही खत्म, तो इसलिए और खतरनाक है भगवत सायुज। तो इस बात को कह करके सालुक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य तम अच्युत दियमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनं जना, ये भागवत से और एक श्लोक उदाहरण किए कि भगवान के भक्त लोग जो होते हैं, भट्टाचार्य कहे समस्त प्रकार के मुक्ति प्रदान कर जाने पर, किए जाने पर भी शुद्ध भक्त उनके स्वीकार नहीं करता, वह भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। प्रभु कहे मुक्ति पदेर आरा अर्थ है, जो सार्वभौम ने इतने विशाल व्याख्या दिया मुक्ति का, मुक्ति को बिल्कुल धजिया उड़ा दिया। बोला है मुक्ति इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए, आपके गोष्ठी लोग तो बिल्कुल खतरनाक, मुक्ति को देखने से रेड लाइन में लगाते हैं, तो इसलिए आप फिर मुझे बोलते हैं कि मुक्ति को क्यों चेंज किया, वो करना था मैं कर दिया। प्रभु कहे मुक्ति पदेर आरा अर्थ है, मुक्ति पद शब्द साक्षात ईश्वर कहे, तो भगवान बोले आपको पता नहीं, आप कौन सा डिक्शनरी फॉलो करता है, और एक डिक्शनरी है, मुक्ति का डेफिनेशन दूसरा भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुक्ति पद शब्द का अन्य अर्थ है, मुक्ति पद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्योतक है। मुक्ति पदे जारस ही मुक्ति पद हय किम्बा नवम पदार्थ मुक्तिर आश्रय, बोले मुक्ति पद का अर्थ है मुक्ति पदे जस्य स मुक्ति पद, जो मुक्ति पदे सदाय भाग, ओ मुक्ति पद मतलब वो जो बोलता है सालुक्य शास्त्रीय मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करना, वो नहीं है मुक्ति, जिसका पैर जिसका चरण में शरण लेती है, मुक्ति पदे जस्य स मुक्ति पद, भगवान का एक नाम है मुक्ति पद, भगवान के चरण में मुक्ति रहता है, इसलिए सारे भक्त लोग चरण को पकड़ना चाहते हैं, माल तो ही है। हाँ हाँ, तो इसलिए मुक्ति पद भगवान को कहा गया, क्योंकि भगवान के चरण में मुक्ति रहती है। क्योंकि सभी प्रकार के मुक्तियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल में विद्यमान रहती है, अतः वे मुक्ति पद कहे जाते हैं। एक अन्य अर्थ के अनुसार मुक्ति नौवा विषय है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुक्ति के आश्रय है। जो भागवत के सेकंड कांड के जो भागवत के कंटेंट्स, भागवत के विषय वस्तु के बारे में सुखदेव जी ने बोले तो 10 विषय बताए। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणमुतयः मन्नंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रयः। ओ मुक्ति है 9th सब्जेक्ट और जिनका आश्रय है भगवान, बाकी 9 तो वो सब आश्रित है और 10वां पदार्थ आश्रय देने वाला, आश्रय दाता है, सब आश्रित है, तो मुक्ति भी उनके आश्रित है, उनके चरण में रहने वाला है, तो इसलिए उनको मुक्ति पद कहते हैं। किम्मा नवम पदार्थ मुक्ति र समाश्रय सम्यक रूपण आश्रय हुई। जब ये अर्थ किए तो उनको बोले तो क्यों चेंज किया, एडिट मत करो उसको। दुई अर्थ कृष्ण कही केने पाठ फिरी, ये 2 अर्थ होता है मुक्ति का, डबल अर्थ होता है कि भगवान मुक्ति की आश्रय भगवान, तू उनको न जान करके चेंज क्यों कर दिया, क्या करेंगे। पहले जमाने में जो ट्यूशन कर रहे थे ना तो उसी का उनका था समझ, इसके लिए कर दिए। दुई अर्थ कृष्ण कहे केन पाठ फिरी, सार्वभौम कहे ओ पाठ कहिते ना पारी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा चूंकि मैं इन दोनों अर्थ से श्री कृष्ण को समझ सकता हूँ तो फिर श्लोक बदलने से क्या लाभ है। सार्वभौमाचार्य ने उत्तर दिया मैं इस श्लोक का वह पाठ नहीं कर पा रहा था, बोला मुझे पता ही था नहीं, मैं इसको पढ़ा ही नहीं था, मेरे लाइब्रेरी में पुस्तक था ही नहीं। यद्यपि तुम्हारा अर्थ यही शब्द कया तथापि आश्लिष्य दोषे कहन ना जाया। यद्यपि आपकी व्याख्या सही है किंतु मुक्ति पद ये पद में असमंजसता होने के कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं कि आप जो बोलते हैं समझ गए, स्पष्ट है भगवान के चरण, भगवान के नाम आया, मुक्ति पद का मतलब भगवान स्वयं है, लेकिन उसमें सस्पिशन आता है, संदेह होता है कि ये मुक्ति है वो मुक्ति, तो संशय आत्म विनाशति संदेह क्यों रखे, खत्म करो, सही वर्ड लगा दो, तो मुक्ति हटाकर भक्ति लगा देने सही हुआ। यद्यपि मुक्ति शब्द हय पंचवृत्ति रूढ़े वृत्ति कहे तब साहिज्य प्रतीति। मुक्ति शब्द 5 प्रकार की मुक्तियां का द्योतक है किंतु सामान्यतया इसका मुख्य अर्थ साहिज्य की प्रतीति है। सर्वम कहते हैं कि यद्यपि 5 मुक्ति है लेकिन जो मुक्ति कामी है, कोई मुख्य मुक्ति कामी लोगों को जाकर पूछो वो सीधा बोलेंगे बाकी छे हम तो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, वो मुक्ति के अर्थ सीधा मिल जाना चाहते हैं, इसी को मुक्ति बोलते हैं। बोले मुक्ति होने के बाद फिर भी रहेंगे हमने, फिर मुक्ति क्या हो, बोले कुछ हाथ पर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल निर्विशेष निराकार निर्गुण हो जाए तो मुक्ति माना जाएगा, और गुण भी रहेगा आकार भी रहेगा विशिष्टता भी रहेगा तो देन व्हाट, वो कैसे मुक्त हुआ भाई। मुक्त मतलब पूरा जीरो हो जाना सब छोड़ करके, इसी को मुक्ति मानते हैं। यद्यपि मुक्ति शब्द है पंचवृत्ति रूढ़ी वृत्ति कहित वो साहज्य प्रतीति। मुक्ति शब्द कहिते मने हय घृणा त्रास, सार्वभौम कहते हैं मुक्ति शब्द कहिते मने हय घृणा त्रास, भक्ति शब्द कहिते मने हय त उल्लास। बोला मुक्ति कहने से मन में त्रास भय होता है, घृणा होता है, भक्ति कहने से तो उल्लसित हो जाता है, मन खिल उठता है। सुनिया हासे न प्रभु आनंदित मने, महाप्रभु खुश हो, वाह क्या चेंज हुआ है, मानना पड़ेगा कोई 1% कुछ नहीं रह गया। सुनिया हासे न प्रभु आनंदित मने, भट्टाचार्य कहिले प्रभु दृढ़ आलिंगने। उनका ऐसा जुक्ति की सुन करके महाप्रभु हंसते हंसते आकर के गाढ़ आलिंगन मिले उनको, बोले वाह 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 पक्का कोई कलमस नहीं रहा आपसे। यह व्याख्या सुनकर महाप्रभु हंसने लगे और तुरंत ही उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भट्टाचार्य को दृढ़ आलिंगन किया। जय भट्टाचार्य पढ़े पढ़ाए मायावादे, वही बोलते हैं जो भट्टाचार्य अभी कुछ समय पहले, कुछ समय मतलब हफ्ता 10 दिन पहले और क्या, ज्यादा दिन थोड़ी हुआ। सही भट्टाचार्य पढ़े पढ़ाए मायावादे, स्वयं पढ़ता था और पढ़ाता था। तारा ऐसे वाक्य सुरे चैतन्य प्रसादे, वो ऐसे बदल गया, ऐसे बात कट्टर होकर बहता है, कैसे? केवल चैतन्य प्रसाद है, महाप्रभु की कृपा से रेडिकल चेंज। लोहा के जावत स्पर्शी हेमना ही करे, क्या एग्जाम्पल दिए हैं, लोहा के जावत स्पर्शी हेमना ही करे, तावत स्पर्श मणि के चिनिते ना पारे। कोई स्पर्श मणि है, हाउ डू रिकनाइज, हम तो भाई देखे नहीं, बाजार में मिलता भी नहीं, कोई सुने नहीं देखने, अदृष्ट अश्रुत, कोई टच स्टोन लाकर दे भाई, हाउ डू वी नो दिस टच स्टोन, हम बचाने से कोई बोलते हम थोड़ी मान ले। तो तटस्था लक्षण देखो भाई, कार्यक्रम देखा कोई लोहा को टच करे, अगर लोहा सोना हो जाओ रे काम मन तो है फिर है। तो इसी को बोलते हैं लोहा के जावत स्पर्शी हेमना ही करी, जब तक लोहा को टच करा दो लोहा तत्क्षणात तो सुना नहीं बन जाता है, तब कोई स्पर्शमणि को स्पर्शमणि मानेगा, खाली कहने से नहीं मानेगा। तो महाप्रभु ही देखते हैं, दिखाते, बोले देखा दे, सार्वभौम परिवर्तन किया, पब्लिकली देखो ये क्या हो गया, सुना बन गया। अभी भक्ति शब्द के अलावा मुक्ति शब्द तो मुंह में नहीं लेता, चेंज कर देता है, पाठ परिवर्तन कर देता है। तावत स्पर्शमणि कह चिन्हित ना पारे, ये वास्तविक स्पर्शमणि है, बस बिना स्पर्श के रिमोट में चेंज कर दिए। बाकी तो महाप्रभु स्पर्श थोड़ी के, वो तो दूर में बैठे थे, स्टूडेंट थे, डिस्टेंस से भी केवल दृष्टि दे करके यही चीज चेंज कर दिए। भट्टाचार्य रे वैष्णवता देखी सर्वजन, प्रभु के जानिल साख्यात ब्रजेंद्र नंदन। अब जितने लोग सब थे, भट्टाचार्य का एतादृश परिवर्तन, मुक्ति शब्द को मुंह से निकालना नहीं चाहता, सच्चे स्टंच डिवोशन, मुक्ति के भक्ति के प्रति इतने आसक्ति भाव देख करके सभी जितने परिकर गण थे, भक्तगण थे, प्रभु के जानिला साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ओ तो पक्के 100% नंद नंदन है, उसमें कोई संशय नहीं। बाकायदा बदला दे सार्वभौम बुढ़ा, इसी चिन्ह काशी मिश्र आदि जत नीलाचल वासी, शरण लैल सवे प्रभु पदे आसी। अब ये घटना को देखने के बाद में आंखों देखा हाल, वहां से जो और बड़े बड़े पंडित थे, मिश्र ब्राह्मण काशी मिश्र आदि, वो राजगुरु थे काशी मिश्र, वो तो देख करके आंख निकल पड़ा, बोले माय गॉड क्या ये। इस घटना के बाद काशी मिश्र आदि जगन्नाथपुरी के सारे निवासी महाप्रभु के चरण में शरण में आए। सही सब कथा आगे करीब वर्णन, सार्वभौम करे जे छे प्रभुर सेवन। बोले ये कथा बाद में बताएंगे, सार्वभौम कैसे सेवा किया, अब तो केवल ट्रांसफॉर्म हुआ, अभी तो केवल मुक्ति हो गया, मुक्ति होने के बाद जो कार्य जिसको मुक्त माना जाता है वो कैसे करेगा, वो तो और मीठा है, उसको आगे बताएंगे। हरे कृष्ण, एनी क्वेश्चन? चलो अच्छा, इसमें मुझे कुछ न कुछ है ही नहीं, क्या आपका भी है क्या, बोलिए।
सुंदर वर्णन कर सर्वर्णन करवर्तन कर, तो मेरे दो प्रश्न थे, एक तो इतना कि ये जो मुक्त होना चाहता है, सही जो मुक्त की प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान के रूप को नहीं मानते, विग्रह रूप को नहीं मानते, तो इस प्रकार से मायावादी कृष्ण प्रति जो महाप्रभु कहते हैं, तो फिर ये मुक्ति कैसे प्राप्त कर पाते हैं? भगवान के विग्रह रूप को नहीं मानते हैं, और ज्ञान योगी भी होते हैं तो उनको भी भगवान की सेवा मतलब कहते हैं,
उससे मतलब नहीं,
माध्यम से उसको भी उसका जो अभिष्ट है वो पूर्ण होता है, तो भगवान के विग्रह को नहीं मानकर, भगवान के रूप को नहीं मानकर
नहीं मानते हैं, माइक मानते हैं, जैसे हम लोग का रूप है इसे मानते हैं, इसीलिए तो मायावादी है। अरे भाई, भगवान की चिन्मय विग्रह को माइक मानना अपराध नहीं है,
अपराध है।
हाँ तो अपराध तो है,
अपराधी होते हुए
और तो दंड पाते हैं, इसलिए साहब जी मुक्ति पाते हैं, ये कोई अच्छा थोड़ी है। यही तो बोला कि उनके लिए दंड है, ये पनिशमेंट, दे आर गेटिंग पनिश्ड।
दंड प्राप्त करने के लिए इतनी
मेहनत। हाँ भगवान अर्जुन को कहे भगवद गीता में कि क्लेशो अधिक तरसते साम, क्लेश मतलब कष्ट है, उनका बहुत ज्यादा कष्ट होता है, और फिर इतने कष्ट उठाकर क्या करते हैं, क्लेश अधिक तरसते साम अव्यक्त सक्त चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम, और जाके दुखी भी होंगे फाइनली बहुत कष्ट उठाएंगे, बहुत परेशानी होंगे, मेहनत करेंगे और फाइनली दुखी होंगे। दिस इज इट। अरे भगवान में तो सेंटर सब हृदय परिवर्तन कर दिया उनका,
पैसे कैसे,
पहले तो निर्विशेष थे, हाँ जिसे सुखदेवी आदि थे ऐसे ब्रह्मवादी थे, मतलब मायावादी नहीं थे, मायावादी नहीं थे, वो जो जैसे परम तत्व को तीन प्रकार से जाना जाता है, अब जानते हैं ना, जो अद्वैत सत्य है परम तत्व, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, ये तीनों सही है, तो उनका प्रिलिमिनरी स्टेज में थे, प्रिलिमिनरी स्टेज कौन सा होता है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म तो यूनिवर्सल होता है, उसका कोई आकार विकार थोड़ी ना होता, तो उसी स्टेज में थे, बट दे आर नॉट अपराधी, ब्रह्मवादी दे आर नॉट अपराधी, ब्रह्म है तो प्रमोशन लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म जान, ब्रह्म कुछ धर्म है, अभी बाद में प्रमोशन लेंगे, परमात्मावादी होंगे, फाइनल फिर स्टेज में आएंगे भगवतवादी होंगे, वो प्रिलिमिनरी स्टेज में थे, वही क्लास में थे, केजी क्लास में, तो उनका फटाफट लिफ्ट पकड़ कर ऊपर चले गए, यही था, अपराध नहीं थे। अपराध नहीं,
भगवान के शरीर में जो शरीर होना चाहते हैं, तो भगवान के शरीर को चिन्मय मानते हैं या
नहीं? नहीं नहीं भाई, चिन्मय मानने से चिन्मय बिना लीन हो नहीं, उनको चिन्मय होना पड़ेगा फिर भाई, पानी में मिलना है आपने, तो आपको पानी बनना पड़ेगा ना, अब आप पत्थर है पानी में कैसे मिल जाएंगे भाई, तो हम हमारे शरीर को हम जैसे मानते हैं भगवान शरीर को ऐसे ही मानते हैं, गड़बड़ी तो ही, तभी तो मिल सकता है ना भाई, तेल तेल में मिलेगा और पानी पानी में मिलेगा, पत्थर पत्थर में मिलेगा, जो जैसे है उनके सजातीय सजातीय मिलन होगा, वो हमारे जैसे मानते हैं, वो मूर्खों का ही दृष्टि है।
कैसे मानेंगे, हमारा शरीर तो ये तो नश्वर
है, नश्वर है,
तो लेकिन आत्मा को तो मानते हैं,
आत्मा को मानते हैं, हम भी आत्मा वो भी आत्मा, इस मानव तो समान है,
तो परमात्मा मतलब आत्मा का साकार रूप नहीं मानते,
ब्रह्म साइज और ईश्वर साइज का अंतर है, ब्रह्म साइज जो है भगवान के शरीर नहीं, शरीर से निकला हुआ जो तेज है,
तो शरीर को अलग
बल है, बल का जो लाइट निकलता है वो लाइट में जाकर रह जाना, यह ब्रह्म साइज, और बल के अंदर घुस जाना यह ईश्वर साइज है, समझ में,
तो एक शाश्वत शरीर बन गया ना, वहां से निकल तेज अलग हो गया, और तेज वहां
तेज का स्रोत
वो अलग हो गया, फिर दोनों हाँ। हो
गया, नहीं तेज का स्रोत को भी वो चिन्मय नहीं मानते, वो बोलते हैं कि वो अच्छा है, मैं यहां तक गया और अंदर जाऊंगा, और अंदर जाऊंगा, जो कंपटीशन करते ना, मैं केवल यहीं तक गया, मैं और अंदर जाऊंगा, कोई डीप डार्क हॉल है, दौड़कर मैं भी घूम घुस जाऊं, अरे दरवाजे के पास खड़ा हो गया तब तो दिखाई पड़ता है, तू मैं और अंदर जाऊंगा, अपने गर्व मानवा, और जितने अंदर जाएगा इतने और डार्क में जाएगा, फंसेगा वो, तो बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल लाइट का, जहां से लाइट निकलता है वहीं पे चले जाएंगे, इस हिसाब से जाते हैं, उनको बड़ा मान कर जाते हैं, लेकिन फंस जाते हैं जाकर, क्योंकि लाइट में रहने से देयर इज ए ऑप्शन, कोई स्कोप है कि फिर कभी आने का चांस है उनके पास, लेकिन वहां जाने से फिर चांस ही खत्म, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक, वो बेचारे भगवान के शरीर को चिन्मय करके तो मानते तो है नहीं, है ना, नहीं अगर मानते तो डरते भाई फिर हमारे गड़बड़ हो जाएगा, वो इसको नहीं मानते, वो तो बोलते हैं हम मिल जाएंगे, वो ही हम हो जाएंगे, हम वो भगवान होना ही चाहते हैं, उनका वही प्रोजेक्ट है, जो भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान ही बन जाएंगे, बोलते एक बार उनके शरीर में जाकर के मैं ही हो जाऊंगा भगवान, और फिर लाइट में क्यों रहूंगा, है ना, वो भगवत शरीर को मानते हैं, कभी कभी देखिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवत विग्रह की उपासना भी करते हैं वो लोग, वो उपासना क्यों करते हैं, जैसे हम बस पकड़ कर जाते हैं अब बस पकड़ करके वहां तक गए और जा पहुंचे थे, बस को छोड़ दी, बोले तो साधन था, साध्य मिल गया, फिर साधन से क्या मतलब है, डाउट, और छोड़ दी, मैं आ गया, पहुंच गया। तो बोलते हैं कि थोड़ा उनके पास पहुंचने के लिए वो विग्रह कल्पना प्रसुत है, एक काल्पनिक है, लेकिन भगवान बोले फिर ये कल्पना क्यों करो, यही जो भगवत विग्रह को मानते हैं इमेजिनेशन, काल्पनिक मानते हैं। ओके, स्टिल नॉट क्लियर। उसमें कहा है कि पचड़ा में फंसता है यार, जाने दो उसको, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, है ना, नहीं हाँ, ऐसे टाइम खराब करने क्या मतलब हो, जाने दो, जाए ना गए, कुछ करे कुछ करे, अंधार में रहे लाइट में रहे, जाने दो, फॉरगेट इट, हमसे को मतलब नहीं, व्हाई विल वेस्ट टाइम फॉर दैट। तो फिर सार्वभौम वन में बनोगे, फिर परिवर्तन होगा, तब जाकर मानोगे। सार्वभौम बनना तो भारी कठ के पाठ है, और फिर सार्वभौम बन करके वेट करना पड़ेगा, कभी भगवान आएंगे हमको उद्धार करेंगे, हैं? अभी तो इतने इजी है, बिना सार्वभौम बने, बिना कुछ किए, इस कर्म जाइन करो, काम बन गया, सो इजी है ना, नहीं एक कईयों का हृदय परिवर्तन हो गया है, आपका भी हुआ है, आप करते हैं कितने लोगों के, अब फिर उसमें डार्क में जाने का क्या जरूरी है ना। स्वर्गलोक में
स्वर्गलोक जाएंगे,
ऑफकोर्स, क्योंकि हम लोग सब आरोप सिद्धा भक्ति करते हैं, भक्ति करने से सिना भक्ति का जो गोल है वहां जाएंगे, भक्ति तो करते नहीं, मस्ती करते हैं, तो कहां जाएंगे, इसलिए स्वर्ग जाएंगे और क्या करेंगे, दैट इज फैक्ट, मोस्ट ऑफ अस वहीं तक जा पाएंगे, क्योंकि ले दे करके हम जो भक्ति करते हैं पीछे सुख की इच्छा छिपा हुआ है, और भक्ति के परिचय के साथ कहा गया अन्य अभिलाषा शून्यम, भागवत में कहा गया अतो भक्ति अदुख्य से अहेतु की अप्रतिहता, पहले डिलीट मार दिए, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, और हमारे हेतु की स हेतु की सब, तो क्या होगा, भक्ति थोड़ी होगा, फॉर्मूला बदल गया उसका, तो हम सहेतु की जो है, सहेतु की क्या क्या हेतु है, सुख वंशा, और सुख का माने स्वर्गीय सुख, ओ माय गॉड, रियली वो तो होना चाहिए, बाद में देखेंगे गोलोक का, बाद में देखेंगे, रखेंगे पिंडी में, तो है ही है, लेकिन ये पहले हो जाना चाहिए सबका मन में, ये विचार पटम दिहाट ये है, तो इसीलिए कहा गया कि तुम तो ही जाओगे एक बार, और कई बार गए भी हैं लेकिन अभी नहीं सुधरे, अहेतु की भक्ति जब तक नहीं होगा तब तक फिर कहां जा पाए, असली भक्ति तो अहेतु की है, हमारे सहेतु की है इसलिए प्रतिहत हो जाता है, लेकिन जो अहेतु की है वो प्रतिहत हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए गड़बड़ी है हमारे, इसलिए सर। ओके, एनीथिंग एल्स, यस, भक्ति मार्ग में क्या जरूरी है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाकर बोलिए,
भक्ति जब अपन करते हैं, हम लोग करते हैं या भगवत मार्ग में जाते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भक्ति मार्ग में भी हमें बहुत बार ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, दंड हो, जैसे भगवान राम जी वो भी वनवास कर चुके हैं, और भी रिलीजन में जैसे जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, उनको भी सूली पे चढ़ा क्रसीफाई किया गया था, अगर भगवान भी सफर तो करते ही हैं कोई, तो ऐसे वो ना जो पनिशमेंट होती है, अभी लेक्चर में आपने उसको बोला था, तो मेरा सवाल इसी पे है कि क्या ये जरूरी है कि आप सही मार्ग पे भी जाके भी पनिशमेंट तो मिल सकता आपको दंड, और अगर मिल सकता है तो क्यों, उस पर थोड़ा सा,
वेरी गुड, तो प्रभु जी का मैं जितना समझ में आया वो जानना चाहते हैं कि जो हम मायावादियों को बोले दे आर गेटिंग पनिशमेंट, कृष्ण अधिक तरसते हैं, हम कष्ट उठाते हैं, तो भक्ति मार्गों में तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत परेशानी, तो वो भी तो भी पनिशमेंट है, इतने कठिन। और यहाँ तक तो प्रभु जी बोलते हैं भगवान राम भी तो वनवास गए, हाँ हमारा को हम कौन से गाय के गोबर है भाई है? तो लेकिन इसका समझ इस प्रकार है, आचार्यगण का कहना है कि भक्तों का जो तथा कथित एक्सटर्नल मिजरेबल कंडीशन जो दुख है, वही जो दुख देखते हैं उनके शारीरिक और इस प्रकार की बाहर दुख, उनको जो नहीं जानते हैं भ्रमित होते हैं, ये भी तो दुखी हो रहा है, रो रहा है। लेकिन जो वैष्णव भक्त होते हैं उनका एक प्रकार शारीरिक और बाहिक दुख वो तो केवल चिन्मय सुख का प्रदर्शित करता है, उसको जो जानकार लोग वही जानते हैं, जो नहीं जानते समझ नहीं पाते हैं, है ना नहीं? हाँ, उसका पीछे क्या है, जब श्री माधवेंद्रपुरी अंतिम समय में रो रहे थे, बेड रिडन थे, ऐ दीन दयार्द नाथ मथुरा नाथ है, ऐसे कदावल किंग करो मी हम, ऐसे कह करके रोते थे बार बार, बच्चे जैसे ऐसे रोते थे, अश्रु विसर्जन करके बड़े विकल होते थे, सर पीटते थे, छाती पीटते थे। तो उनके दो शिष्य थे, एक रामचंद्रपुरी थे, ईश्वरपुरी थे। रामचंद्रपुरी देखे बोले, और भी लोग देखते थे इतने बड़े महानुभाव, इतने बड़े भक्त, वो ऐसे रोते हैं। तो बोले, हे गुरुदेव, आप तो साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए हैं, आप तो इतने बड़े पारदर्शी भक्त हैं, आप इसे रोते हैं, आप समझदार है, ये तो ना समझ ताड़कल लोग रोए धोए कष्ट, आप कैसे कष्ट इसे प्राप्त करते हैं, इसे रोते हैं, ये अच्छा नहीं लगता, आप तो बिल्कुल हंसते हंसते शांत मुद्रा रहना चले गए लोग, ऐसे उनको कहने लगे। तुम माधवपुरी उनका सजेशन सुन करके बोले, गेट आउट, मेरे सामने मित्र मुंह नहीं देखना चाहता, मरते समय में मुझे रोने पे रोक रहा है आकर के, मैं शांत रहूं। बोले, तू क्या समझेगा, गेट आउट फ्रॉम हियर, क्योंकि वो ना समझता, जानता नहीं था इस रोने के पीछे क्या आनंद था। आप देखिए, भगवान के जितने भक्त अभी तक संसार में हुए हैं, हो भी सकते हैं, सबसे सीमा में सबसे श्रेष्ठ भक्त ब्रजवासियों को माना गया है ना नहीं, ब्रजवासियों में ब्रज गोपिकाओं ब्रजंगनाओं को माना गया, ब्रजंगनाओं में सर्वश्रेष्ठ दी मोस्ट सुप्रीम पोजीशन में श्री राधिका है ना नहीं। और उन लोग का जो विश्लेषण किया जाए उनके समय का, भगवान ने ब्रज में ज्यादा से ज्यादा 10-11 साल बिताए, बाकी 125 साल उनसे अलग रहे, मतलब रोए 125 साल रोना, 10 साल हंसना, है ना नहीं। बोले, इसे कि जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान के, 125 साल तक रोना, कोई भक्ति करके राजी होगा? भैया, भक्ति करेंगे तो सुसुख हम कर तुम अब हम होगा थोड़ा सुख तो होगा भैया, सुख के बाद में 125 साल रोना पड़ेगा, तैयार हो? बाप रे बाप, हम नहीं जाएंगे, इसे डरो मत। ये जो 125 साल रोना, वो तो ये सुख से भी कई करोड़ गुना ज्यादा सुखी थे, है ना नहीं। हाँ, उस रहस्य को सभी लोग नहीं जानते, वो तो केवल वही लोग ही जान पाते हैं जो उसको अनुभव किए, है ना नहीं। हाँ, कृष्ण
हरेश, हमारे जो हम भक्ति कर रहे हैं, जैसे जो भी साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हम अपनी चेतना को अगर समझने का कोशिश करें, तो हमें कैसे पहचाने कि कौन से हमारे जो विचार है वो जो ना मुक्ति, जो मुक्ति से प्रेरित है, या हम जाने की मुक्ति कामी जैसे बोलते हैं, तो हम और उस पर सुधार कैसे आए, तो पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करें और उसको कैसे सुधारें पाए उसको।
इट्स वेरी क्लियर, मुक्ति कामी का इच्छा है कि हम मुक्ति होना चाहते हैं, हम बचना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये जिसका लक्ष्य है दुख निवृत्ति, बचना जिसका निवृत्ति है, वो थोड़ी गड़बड़ है। आप जिनका लक्ष्य है कि हम बचना नहीं चाहते हैं, हम तो नौकर बनना चाहते हैं, हम तो जैसे भी तैसे सेवक बनना चाहते, दिस इज माई प्रोजेक्ट, आई डोंट वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम इट, आई वॉन्ट टू गेट इन टू इट, यही अंतर है। गोपी भर्तृ पद कमलयोर तब दास दास दासानुदास, हम दास दास बनना चाहते हैं, बच करके ऊपर जाके हीरो नहीं बनना चाहते हैं, है ना नहीं, हम बचना नहीं चाहते। श्री हनुमान जी ने जब ये स्टेटमेंट दिए, सारे भक्त लोग को उनको अपलोड किए, हनुमान जी ने भगवान राम के समय जब भगवान राम उनको आलिंगन के कुछ भी देने की तरफ, हनुमान जी ने सीधा सीधा बोले, हे प्रभु मैं आपके सेवा करके आपको प्रसन्न किया, तो आपके प्रसन्नता और आपके कृपा के कारण मैं इस मुक्ति को नहीं चाहता हूं जिसमें दुनिया के जावत्य क्लेश समस्त संसार बंधन से छूट जाऊं, इसको नहीं चाहता हूं। बोले क्यों, इसी बंधन छूटना ना, क्योंकि उस बंधन से छूट जाने के बाद जो हमारा आपका रिश्ता है ना, आप मेरे प्रभु मैं आपका दास, ये मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं इस मुक्ति को नहीं चाहता हूं जिनके द्वारा ये संबंध नष्ट हो जाए, उसको मैं कदाचित नहीं चाहता, क्योंकि हमेशा हम इस संबंध को आशा रखते हैं कि प्रभु आप हमेशा नित्य मेरे प्रभु है, मैं नित्य आपका दास हूं, हमारा यही सेवा कर चलते रहे, ये सही भक्ति की भावना है। जब इससे हट करके मैं भी बन जाऊं कुछ, तो ये गड़बड़ है। एक वेरी क्लियर आइडेंटिफिकेशन, जब मन में निकलने के लिए हम कुछ बनने की इच्छा होगा, भोक्ता बनने का इच्छा होगा, तो गड़बड़े भोक्ता हो ही नहीं सकते, है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, है ना। हम दास हैं, दास बनना चाहिए, बस यही अंतर है, है ना। एनीथिंग एल्स, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, संवेत भक्त वृंद की जय।